تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء بالخصوص منا کے واقعے میں شہید ہونے والے حجاج اکرام، اس کے علاوہ دنیا پر دوسرے مقامات بالخصوص فلسطین، شام، بحرین میں شہید ہونے والے مظلومین کے لیے ایک بار سورہ الحمد تین و سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة درود بجي محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد خداوند عالم کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت مودت ہمارے دلوں میں قرار دی۔ اسی خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ ہمیں حقیقی معنوں میں ان انسان کامل کی سیرت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عادت کے مطابق ابتدا میں جو آپ سے وعدہ کیا تھا کل کی مجلس میں گزارش کی بھی باتوں کو سمرائز کرنے کی صورت میں انگلش میں اپنے دوستوں کے لیے کہ جو اردو سے آشنا نہیں ہے اور بعض جوانوں کے لیے میں ابتدا میں پیش کرتا چلوں۔ ایک بار درود بھیجو محمد والے محمد پر۔ الحمدللہ وی اسٹارٹیڈ دا ٹاپک آف دا سیرہ آف امام سجاد علیہ السلام اینڈ as a some of the preliminary discussions we started tomorrow yesterday and inshallah from now onwards we will start the seerah of Imam Sajjad directly, but before that I will summarize what we discussed yesterday so that those brothers and sisters who do not understand Urdu or my youths and the kids who do not understand Urdu or who prefer to listen in English the things we discussed yesterday. But before summarizing the stuff discussed yesterday, I just want to clarify one thing, or maybe you can say that want to discuss or share you with you one point, especially with those who are directly related to the upbringing, upliftment of the kids. especially the parents, and all those centers, institutions, where in any way they are training our new generation. Whether they are madaris, Sunday madrasa, where they are schools, whatever they are. We should be very careful that on one hand, we have to deculturize our centers, and these centers should not be limited to a specific community. So definitely we should try to arrange our program in a way that these centers, these institutions should not be for just one community, okay? So specifically in this West, we should not have centers like this center is specifically for example, Urdu-speaking community, this center is specifically for Khoja community, this center is specifically for Arabs, this is for Iranians. Definitely we should have a centers which are Islamic centers. We should have a centers which should be Islamic. So in this way, we have to arrange the center's strategy, and the planning should be something like that. It should not be based on a specific language. But on the other hand, we should be very careful that our new generation should be aware of the languages which are truly Islamic languages, specifically Arabic. And in the second category, we can understand, our generation should understand the Persian and Urdu. Why I am saying like this? Brothers and sisters, right now we are living in an era, and that era is actually, we are in a full-fledged cultural conflict. Okay, whenever I say this word conflict, you just translate it into a word which is a three-letter word in English, which is started with W, okay? So, because you know this is 2015, as the Prime Minister said to us, so we should be very careful about that. Now, we are in a full-fledged conflict, and that conflict is between the Islamic civilization and others. Or maybe I can say like this, not just Islamic civilization. It is the conflict between the oppressed people and the oppressors. Or I can say like this, I think it will be more better, that it is a conflict between divine and those who are related to Allah subhanahu wa ta'ala and satanic forces. Okay, so this is the complete full-fledged conflict between these two forces. And one of the most important tools or instrument that is used right now in this cultural conflict is language. Language is nothing, you cannot say that language is a simple thing, no. Language is something which is quite important for us. And that's why you can understand that why our ulama and previously Allah subhanahu wa ta'ala emphasized on that whatever we perform, our namaz, our Quran, everything, it should be in Arabic. Why we cannot pray our namaz in Urdu and English and Farsi, Persian? Why not? Just think over it and see that when Islam is have a complete civilization, language is one of the basic content, basic instrument to create that civilization, okay? So we should be very careful, and we should know that we have to convey this message to our new generation that they have to learn these languages, specifically Arabic. For example, when you look at the teachings of, for example, different ulama, especially those ulama who are the reformists, maybe, for example, Jamaluddin Akhwani, or maybe in the current era, we can talk about the Shahid Mutahiri. According to Shahid Mutahiri, learning Arabic is wajib, is obligatory on all of us, to all the Muslims, that they should learn Arabic. Why is it so that in Islamic institutions, Islamic centers, we are not able to convey our message in a common mean? We have to use English. I'm not saying that we should not learn English, okay? But we should be quite aware that we have to convey our new generation that they have to learn Arabic, and I'm saying that other languages also, the Persian and the Urdu. So in this conflict, the one of the most important tool used by this Western civilization is the language thing. Just to give you an idea that when in Turkey, the Islamic, so-called Islamic country, okay, this is a modern country which is presented to us as a role model for the Islamic countries, okay. Kemal Atatürk, when he started his journey there, he started to bring a change in that society. The first thing he changed is the language. Still, the Turk people, they speak like Persian language, like Arabic language, okay? But when you see their writings, they are writing in an English, the ABCD, they are using almost the same writing style of the English or the other, for example, French languages, okay? So they emphasize this so much because they want to change their new generation. When the new generation wants to understand Islam, they want to read Islam, they want to read Quran, they feel themselves quite away from these things because they do not understand Alif Bata. They just know ABCD, okay? Now, it is quite difficult for them to create a understanding with this, these specific languages. So we should be very careful and we should try to change this, our society, in our society, bring a change so that the Arabic language specifically and other languages, other Islamic languages, we should create a movement in our society so that the youth, the older people, the young generation, they should be aware of these languages, especially Arabic, so that inshallah in long term they have a good connection with Quran, they have a good connection with the history, they have a good connection with the Islamic sources. For example, right now if you look at how rich the Arabic language is as far as the poetry and prose is concerned, how rich the Persian language is as far as the poetry and prose is concerned, how rich the Urdu language is. Alhamdulillah, we have good poetry and poets. For example, the Iqbal is known as Iqbal Lahori. He is one of the poets who, when you study that person, you read that person, you understand that how rich the culture is and how close this poetry is with the Islamic teachings. Especially when you read the poetry of Allama Iqbal in the last few years of his living, all of them, you see that he is using the Quranic ayat and the traditions and the hadith of Ahlibayt alayhimus salam. So definitely this language thing is quite important for us and we should emphasize on that. And I don't know, we should have a plan. We should have a comprehensive plan in our society, in our institution, in our centers, especially those who uses the suffix or prefix of Islam. Okay? Those who do not use that thing, I'm not talking to those people. Okay? But especially those people, those institutions, those organizations who are using the suffix or prefix of Islam, they should be aware that this is one of the most important responsibility of all of us, that we should be aware of that. Please recite a salawat. Allahumma salli ala Muhammad. So yesterday we were discussing about the seerah of Ahlibayt alayhimus salam. First of all, I discussed the importance of history, how important it is for us that we should study the history. We should aware that what mentioned in the history, we should know the world history, we should know the history of Prophet alayhimus salam, specifically the seerah and the history of Ahlibayt alayhimus salam. And as mentioned, that one of the most important jewel in the precious diamond in the history is the seerah of Ahlibayt alayhimus salam, seerah of Masumin alayhimus salam. So that we have to be aware and we should know in detail, not the superficial understanding of the seerah. No, we have to read in detail what's going on at that time. Secondly, we discussed that in the Islamic sciences, when you look at the Islamic sciences, seerah of Ahlibayt alayhimus salam, seerah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, is one of the basic resource to understand the Islam, the true picture. If you want to create a true picture of Islam, you have to understand the seerah. When you are reading the Quran, you have to read you have to understand the consensus, you have to understand the ijma, and you have to understand you should have a intellect understanding of the understanding of Islam. On the fourth important thing which is mentioned by the ulama is the seerah of Ahlibayt alayhimus salam. So we have to understand that seerah. Now, during the discussion, we also discussed that what is the definition of seerah. We say that seerah is not just the random events which happen in the history, but seerah is actually the methodology, the way Ahlibayt alayhimus salam spend their days and nights in that specific time. And that seerah will be applicable in our time also, in our era also. We cannot say that, okay, Imam alayhimus salam lived 1400 years ago and this seerah is not applicable to us. No. If you understand the methodology, if you understand the principles that are discussed in this seerah, then you can have these principles, you can apply on your own life today. Secondly, Now, after discussing that this is one of the most important and one of the major sources of Islamic sciences, we also discussed that why we have to understand the Seerah, first of all, because it is one of the sources of Islamic sciences. Secondly, because right now in our society, different people using different events which happen in the Seerah for Ahle Bayt alayhimus salam to say us that this thing is right and that thing is wrong. Okay, so they are using these events as an argument that something which is happening in our society, it is right, or something which is happening in our society is wrong. So first of all, you should have an in-depth understanding of Seerah. After that, you can find out that what they are saying is right or wrong. You can decide that what they are saying is right or wrong. So that's why we have to understand the Seerah in two ways. First of all, it is one of the Islamic resources. Secondly, sometimes the events which took place in the Seerah of Ahle Bayt alayhimus salam, it is used by the people either right way or wrong way. So we should have a criteria on the basis of that. We can decide that what is mentioned by the people, is it right or wrong? Now the last question we discussed in the yesterday's majlis is that what is the right way to study the Seerah? Is the right way that I just open a book, like some of the famous book we have in our society in Pakistan and India, for example, 14 Sitare, okay, 14 stars. I just open that book, start reading the whatever mentioned in the book, and I say, okay, this is the Seerah, and I have to, Imam alayhi salam did that, so I have to do that. No, brothers and sisters. The first and the most important thing we have to be aware of is that whenever we are studying or researching on the Seerah of Ahle Bayt alayhimus salam, we study that Seerah in a form that a single person has a lifespan of 250 years. Okay? Is it not like this that there are 14 different people who are living in different environment, they did different things? No. There is only one person who is living 250 years in different scenarios, different conditions, different environment, and he tells us that what you have to do. Now, it is our responsibility to understand the condition in our societies, in our era, and compare with the Seerah of Ahle Bayt alayhimus salam, this 250 years, and see that which condition, which environment, which scenario is most resemblance to our situation. And after that, we can say that what is our responsibility in this era? What we have to do? How we have to live? What is good for us and what is bad for us on the individual level and on the community level? So we have to read the Seerah of Ahle Bayt alayhimus salam in a way that one single person live the life of 250 years, and we have to understand that this single person, how in different environment, in the era of different khulafa, he spent his life, and how he spent his life, how he showed the reactions in different circumstances, and in that way we can understand that what is our responsibility in this society. Otherwise, definitely, as we discuss different examples, that otherwise we will feel that there is a contradiction in the life of different a'imma. Sometimes the people say that Imam Hassan alayhi salam did something different from Imam Hussein alayhi salam. So, and sometimes we feel that the Seerah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, is different from the Seerah of Imam Sadiq alayhi salam or Imam Ali Raza alayhi salam. So definitely if we study the Seerah in this way, as a single person who lived 250 years, then definitely we have a new picture of the Ahle Bayt alayhimus salam and their Seerah, and in that way we can implement those principles in our modern life, inshallah. Please recite a salawat. Now I'm changing my channel again to the Urdu, and inshallah, sorry to the people who do not understand Urdu, and inshallah it will not waste their time, and if they want to go, they are most welcome to leave the majlis. But if they want to stay here, definitely this is one of the place where Ahle Bayt alayhimus salam, definitely if we do these type of gathering with the khulus, definitely it's the belief of our belief that inshallah Ahle Bayt alayhimus salam are with us, and they are with the people who are listening to us and who are watching us, and we should feel responsible towards them, inshallah. سیرہ امام سجاد کو شروع کرنے سے پہلے اس کی ڈیٹیل میں انٹر ہونے سے پہلے کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ موضوع ایک سینسیٹیو موضوع ہے ایک امپورٹنٹ موضوع ہے कुछ नुकात को, कुछ पॉइंट्स को मैं क्लियर करना चाहता हूँ ताकि जब हम सीरत में एंटर हों तो वी शुड बी वेरी क्लियर, हमें जहन बहुत वाज़े हो कि हम क्या हासिल करना चाह रहे हैं सीरत के इन मबाइस से, इन डिस्कशन से. इमाम हुसैन के अज़ादारों, एक बात बहुत वाज़े तौर पर मुझे और आपको अपने लिए क्लियर कर लेनी है, हमें अपने लिए साबित कर लेनी है, उसके बगैर सीरत की तमाम मबाइस का कोई फ़ायदा नहीं है. और वो बहस ये कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे रोल मॉडल्स हैं एंड वी कैन फॉलो देम, हम उनको फॉलो कर सकते हैं, हम उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं. क्योंकि अगर इस आर्ग्यूमेंट, इस स्टेटमेंट को मैं और आप कबूल नहीं करें और हम ये कहने कि नहीं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वाज समथिंग डिफरेंट, वो किसी और दुनिया की मखलूक थे, वो खुदावंद आलम ने उनको नूर से खल किया था, वो किसी और दुनिया की मखलूक थे, हमारा काम फ़कत फ़कत ये है कि अहले बैत के कसीदे सुने, अहले बैत के मसाइब सुने, कसीदे सुन के वाहवा करें और मसाइब सुन के गिरिया करें, ये हमारा ज़िंदगी का मकसद है. हम अहले बैत की तरह नहीं हो सकते. अगर मैं और आपके जहनों के अंदर बास चीज़ें थ्योरेटिकली मैं कबूल करता हूँ और बास चीज़ें प्रैक्टिकली मैं उस बात पर अमल कर रहा होता हूँ, मैं अगर आपसे बात कहूंगा तो आप कहेंगे नहीं अगर साहब किसने कहा ये, वहाँ साहब ये बात हम कबूल नहीं करते, हम कहते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे रोल मॉडल्स हैं. लेकिन प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में झांक के देखें, मैं और आप जब अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, उनकी सीरत का मुताला करते हैं, मसलन सुनते हैं कि आइमा अलैहिस्सलाम के घर से एक रात में 1000 तकबीरों की सदा बुलंद होती थी, मैं और आपने कभी सोचा कि आया मैं ये काम कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? आप कहेंगे नहीं अहले बैत वो कोई और दुनिया के मखलूक हैं, मसलन वो काम कर सकते, मैं जो है वो कोई और, मुझे और भी सारे काम होते हैं दुनिया में, जॉब भी करनी है, बच्चों को भी पालना है और बहुत सारे और भी काम करने. नहीं अजीज़ाने गिरामी, खुदावंद आलम ने इन हस्तियों को हमारे लिए रोल मॉडल बनाकर भेजा है एंड वी हैव टू बिलीव इट, हमें वाकई मानों में इसके ऊपर एतिकाद रखना होगा. आपको मशहूर जुमला जो कुरान की एक आयत भी है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सलवात भेजा करें तो कोशिश करें कि बाआवाज़ बुलंद भेजें, क्योंकि रिवायतों में आया कि निफाक को दूर करती है. उम्मत के दरमियान मबूस हुए, पहला मशहूर तरीन एतराज़ जो कुफार की तरफ से किया गया वो क्या एतराज़ था कि ये तो हमारे जैसा इंसान है, खुदा ने क्यों फरिश्तों को नहीं भेजा कि फरिश्ते आते हैं और खुदा का पैगाम हम तक पहुंचाते. रसूल का जवाब क्या था, अना बशरु मिस्लकुम, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ. क्यों ये कहा मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूँ, कि मुझे भी वो तमाम ज़रूरतें मेरे अंदर भी मौजूद हैं, वो तमाम ख्वाहिशात मेरे अंदर भी मौजूद हैं, तुम्हारे अंदर मौजूद है. तुम्हें भूख लगती है मुझे भी भूख लगती है, तुम्हें प्यास लगती है मुझे भी प्यास लगती है, तुम्हें रात को आराम की ज़रूरत है मुझे भी सारे कामों की ज़रूरत है. अजीज़ान गिरामी, अगर ऐसा नहीं होता मैं आपसे यहाँ पर आकर 10 दिन कसीदे पढ़ना शुरू करूँ फरिश्तों की इबादत के, कि फरिश्ते जो है वो खुदावंद आलम ने ऐसे फरिश्ते क्रिएट किए हैं कि जो रुकू से खड़े ही नहीं होते, पूरी ज़िंदगी जब से खुदावंद आलम ने खल्क किया है वो आखिरी दम तक फ़कत फ़कत रुकू में है. फरिश्तों की एक बड़ी तादाद है फ़कत फ़कत सजदों में. आप कहेंगे सुबहान अल्लाह माशाल्लाह वाह वाह, इसके बाद आप कहेंगे वो फरिश्ते थे उनको कोई काम ही नहीं था, उनको ना खाना है ना पीना है ना कुछ और करना है, लिहाजा मैं तो ये काम अंजाम नहीं दे सकता हूँ. अजीज़ान गिरामी, खुदावंद आलम ने आइमा अलैहिस्सलाम को सुपर ह्यूमन नहीं है ये लोग, बल्कि परफेक्ट ह्यूमन है, इंसान कामिल है, सुपर नेचुरल मखलूकात नहीं है ये, इंसानों की सूरत में आइडियल तस्वीर हमारे सामने पेश की है खुदावंद आलम ने कि देखो अगर तुम वाकई मानों में इंसान कामिल बनना चाहते हो, वाकई मानों में अब्द बनना चाहते हो, तो ये तस्वीर तुम्हारे सामने मौजूद है. कल को मेरे सामने ये नहीं कहना कि हमें और भी काम थे और हम कुछ और काम करना चाहते, इसकी वजह से हम ये काम नहीं कर सके. नहीं, तुम्हारे सामने वो तमाम आइमा अलैहिस्सलाम की सूरत में प्रैक्टिकल रोल मॉडल्स पेश कर दिए कि जो इन तमाम ज़रूरियात के बावजूद कि जिसमें हमारे आइमा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हमें मिलता है, इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत में हमें मिलता है कि सुबह से शाम तक मेरा मौला एक बाग के अंदर काम कर रहा है, एक बाग के अंदर मजदूरी कर रहा है, वही अली अलैहिस्सलाम दीगर कामों को भी अंजाम दे रहे हैं. बाज़ उलमा बहुत खूबसूरत बात कहते हैं ये जब चीज़ें ये वाक़यात में और आप सुनते हैं तो हमारे जहनों में ये तसव्वुर आता है कि ये अमली नहीं है हमारी सूरत के अंदर। आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कल का वो जुमला मैंने आपके सामने पेश किया, मक्तल ये जुमला कहता है, फस्ताज़ना हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग की इजाज़त तलब की। मक्तल क्या कहता है, फ़अज़ना अल्लाह, यहाँ बेटे ने जिहाद की इजाज़त तलब की, वहां बाप ने कहा कि खुदा की राह में कुर्बान किया अली अकबर तुझे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसान कामिल है, जिस कदर मोहब्बत एक बाप को अपने बेटे से होती है ये इंसान की फितरत का तकाजा है कि एक बाप को अपने बेटे से मोहब्बत होनी चाहिए। जिसको अपने बेटे से मोहब्बत नहीं वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है, ये अफराद इंसान कामिल है। बस जिस कदर मुझे अपने बेटे से मोहब्बत होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा इंसान कामिल को अपने फर्जंद से मोहब्बत होनी चाहिए। और यहीं पर इमाम हुसैन का कमाल है कि इस कदर अपने बच्चे और फर्जंद से मोहब्बत होने के बावजूद जब राह खुदा में कुर्बानी की बात आई तो कहा कि खुदा की राह में हर चीज कुर्बान है। और यहीं पर जो ये कमाल है, वगरना अगर इमाम हुसैन को अपने बेटे से कोई अटैचमेंट ही नहीं होती, कोई मोहब्बत ही नहीं होती, तो फिर कोई कमाल कहां था यहां पर। मुझे अगर किसी चीज से मोहब्बत नहीं हो मैं खुदा की राह में कुर्बान कर दूं तो आप कहेंगे कि भाई आपको तो इससे मोहब्बत ही नहीं थी, आपकी तो इससे कोई अटैचमेंट ही नहीं थी, आपने कुर्बान नहीं करके क्या बड़ा काम अंजाम दिया। मुझे तो अपने बेटे से मोहब्बत है, मैं अगर खुदा की राह में कुर्बान करूं तो मैं कमाल करूंगा। नहीं अज़ीज़ाने गिरामी, हुसैन ने जो कुर्बानी दी उससे ज्यादा बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये सारी मोहब्बतें जो तूल मोहब्बत इलाही के अंदर हो उसके कमाल पर है ये इंसान कामिल। और उसके बावजूद क्योंकि खुदा की मोहब्बत की राह में इस मोहब्बत को कुर्बान करना था तो हुसैन के लिए कोई मुश्किल नहीं थी। और जो राह हुसैन पर चलना चाहता है उसको भी इसके लिए आमादा होना पड़ेगा कि अगर जिन चीजों से हमारे दिलों के अंदर अटैचमेंट है उसको खुदा की राह में कुर्बान करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि हम किस कदर खुदावंद आलम के मुती और फरमा बरदार हैं। जो नुक्ता मैं आपको समझाना चाह रहा था और ये दरहकीकत हमारी पूरी बहस का स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर इस नुक्ते को, इस स्टेटमेंट को मैं और आप कबूल नहीं करते तो ये सारी बहस का कोई फायदा नहीं है। और ये बहस नुक्ता ये, वो स्टेटमेंट ये है, हमें इस बात को कबूल करना होगा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम रोल मॉडल हैं और वी कैन फॉलो देम। अलबत्त इस खाम ख्याली में नहीं रहिएगा कि हम उनके जैसी इबादत कर सकते, ये तवक्को नहीं रखिएगा। क्यों नहीं तवक्को रखिएगा? कि जब मेरा मौला जंगे खंदक में एक ज़रबत लगाता है, एक ज़रबत अली की, रसूल का जुमला क्या था, ज़रबतु अलीयिन अफ़ज़लु मिन इबादतिस सक़लैन। अब नमाजें पढ़ते जाएं, अब दुआएं पढ़ते जाएं, अब इबादतें करते जाएं, अली की एक ज़रबत का जवाब नहीं दे सकते। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जैसा अमल अंजाम नहीं दे सकते हम, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनको उनकी तरह बनने की कोशिश नहीं कर सकते। नहीं, अहले बैत अलैहिस्सलाम चाहते ही ये थे कि वी हैव टू फॉलो देम और वो हमारा हाथ पकड़ने को तैयार है। शफात के हकीकी माना ही ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का दर हाजिर है और वो चाहते हैं उस किश्ती की तरह कि जब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद को कहा कि बेटा आओ इस किश्ती में सवार हो, अगर इस किश्ती में सवार होंगे तो निजात पाओगे, जो इस किश्ती से आगे चला गया वो भी बर्बाद हो जाएगा, जो इस किश्ती से पीछे रह गया वो भी बर्बाद हो जाएगा। आइए अहले बैत अलैहिस्सलाम की किश्ती में सवार हों और हकीकी मानों में अहले बैत की तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करें, उन लोगों की तरह ना बने कि जो किनार पे खड़े होके किश्तियों की तारीफें कर रहे हों, किश्तियों के कसीदे पढ़ रहे हों, किश्तियों के लिए नारे लगा रहे हों, लेकिन उस किश्ती में सवार होने को तैयार ना हो। अज़ीज़ाने किराम, आइए इस किश्ती में सवार हों और अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाना शुरू करें। अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऑल ऑफ अस आर एम्बेसडर ऑफ अहले बैत अलैहिस्सलाम, आप और मैं इस वेस्टर्न सिविलाइजेशन के दरमियान अहले बैत अलैहिस्सलाम के एम्बेसडर हैं। आप सब पर एक जिम्मेदारी आती है, आप सबको और हम सबको अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत का मुजस्सम बनना है ताकि दुनिया जब देखे तो कहे कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, जब ये ऐसे हैं तो उनका आका कैसा होगा। खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि हमको देख कर ये कहें कि ये इतने पस्त हैं तो नऊज़ बिल्ला इनके, जिसके वो मानते हैं, जिसका नाम लेते हैं, जिसका शुआर लगाते हैं, जिसके कसीदे पढ़ते हैं, वो खुदा ना खास्ता कैसा होगा। ये अगर हमने काम किया तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक कहा कि हमारे लिए बायस ज़ीनत बनना, हमारे लिए बायस शर्म ना बनना तुम लोग। आप और मैं, हम सब एम्बेसडर हैं यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम का। आपका एक एक अमल, आपका एक एक आपकी जबान से निकला हुआ एक एक हर्फ अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत का नुमाइंदा है. लिहाजा वी शुड बी वेरी केयरफुल कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और हमें ये काम कैसे करना चाहिए और कैसे अंजाम देना चाहिए. बस एक नुक्ता, हम इस बात को कबूल करके, इस स्टेटमेंट को कबूल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं और वो हमारे रोल मॉडल्स हैं. दूसरा नुक्ता जो मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ, अज़ीज़ाने गिरामी, अज़ादाने इमाम हुसैन, जो कुछ तारीख की किताबों में जिक्र हो गया इसका ये मतलब नहीं है कि वो सच है. इट इज़ रियलिटी, इट इज़ ट्रुथ. झूठ जो है वो किताबों में ही लिखा जाता है, ठीक है. झूठ जो है वो ज़बानों से ही अदा किया जाता है. जब तक ज़बान पे ना आए, जब तक कलम की सूरत में, हरूफ की सूरत में तब्दील ना हो, वो झूठ नहीं है. जब तक आपके जहन के अंदर कोई ख्याल मौजूद है, उसको मैं आप झूठ कह सकते हैं, वो झूठ नहीं है. जब वो ज़बान में अल्फाज की सूरत में ज़ाहिर होता है या कागज़ पे अल्फाज की सूरत में आ जाता है, तब वो झूठ बनता है. लिहाजा जो कुछ तारीख की किताबों में नकल हुआ है, जो कुछ हिस्टोरियंस ने जिक्र किया है, उसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ जो है वो रियलिटी है, सब कुछ सच है. हमें एक, हमारे हाथ में एक फिल्टर होना चाहिए कि जिसकी बिना पर हम इन हकायक को फिक्शन से जुदा कर सके, रियलिटीज को फिक्शन को आपस में जुदा कर सके. हमें ये मालूम हो कि जो चीज़ जिक्र की गई इन किताबों में, इसमें से कितना सच है और कितना झूठ है. और उससे ज़्यादा सेंसिटिव मसला एक और है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक और उससे ज़्यादा हसास मसला एक और है. और वो मसला ये है कि न फ़कत ये कि बाज़ औक़ात तारीख़ की किताबों में वो चीज़ें जो रियलिटी नहीं थी उसको ज़िक्र किया गया है, बाज़ औक़ात वो हक़ायक़ की जो रियलिटी उसको ज़िक्र नहीं किया गया. और ये ख़ुद जो है वो दर हकीकत एक झूठ है. मैं आपको थोड़ा सा इसको एक मिसाल के तौर पर समझाना शुरू करूँ. सपोज करें एक मकाम के जहाँ पर जो है वो इस्लाम ने गीबत की इजाज़त दी है, वो ये कि अगर आपके पास कोई रिश्ते के लिए आता है, कहा कि मैं अपनी बेटी किसी मकाम पर रिश्ते के लिए देना चाहता हूँ, मुझे जानना चाहता हूँ कि ये लड़का जो है वो, इसको अपनी बेटी दूँ या नहीं दूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, आपको पूछना चाहता हूँ. हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी की एक बुराई ये है कि जहाँ पर गीबत नहीं करनी चाहिए वहाँ गीबत करते हुए थकते नहीं हैं, और जहाँ इस्लाम ने कहा कि तुम्हें इजाज़त है कि इसको बताओ हकायक की हकीकत में क्या है, तो कहा कि नहीं आगा साहब मोमिन है, इसकी जो है वो एज ज़्यादा गुजर रही है, अगर मैंने बता दिया तो इसकी शादी नहीं होगी. बाद में वो माँ और उसके वालिद और वालदा जो है उस बेटी के रोते रहे, वो लड़की रोती रहे, उससे मुझे और आपको क्या ताल्लुक है. और हमारी सोसाइटी के अंदर तलाक का रेशो जितना बढ़ता रहे उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है, हम उससे ला इल्म है और बेखबर है. हम ये कहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी नेकी कर दी, एक ऐसी नेकी की जिसमें जो है वो पूरी उम्मत को, पूरी कम्युनिटी को जो है आपने गीबत के अंदर मशगूल कर दिया, ये बहुत बड़ी नेकी की आपने. बाज़ नेकियाँ ऐसी होती है कि जो ना करना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है. लेकिन जो मैं मतलब कहना चाह रहा था वो ये था कि अगर एक शख्स आपके पास आता है और सवाल करता है कि इस शख्स के बारे में, एक्स के बारे में, वाई के बारे में मुझे बताएं कि ये क्या है, एक तरीका तो ये था कि मैं तारीफ़ें करना शुरू करूँ, माशाल्लाह नमाजी, परहेजगार, इबादतें करने में बहुत ये हैं, दुआएं, सब जो कुछ मुझे कहना कहते हैं. यहाँ पे मैं झूठ कह रहा हूँ, ये तो बहुत वाज़ है, इसको तो झूठ है, ये सबके लिए वाज़ है. एक मकाम पर मैं इसकी तस्वीर का एक रुख बहुत वाज़ तौर पर सही बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, फ़लाँ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है कि जो मैं बताता नहीं हूँ. मसलन ये सारे नेक काम तो करते हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ और भी काम करते हैं, वो काम ने मैंने कहा कि मैं नहीं बताता. कल को जब आपके पास आके वो एतराज़ करते हैं कि भाई मैं आपके पास आया था, मैंने आपसे सवाल किया था कि ये शख्स जो है वो क्या है, तो आपने मुझे कहा कि ये तो मसलन यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो सारे काम करते थे वो तो आपने नहीं बताया, तो कहा मैंने तो झूठ नहीं बोला, जो कुछ था मैंने तो जो बताया वो मैंने सच बताया, एक कलमा आप बता दें मैंने झूठ बोला. अज़ीज़े गिरामी, आपने झूठ नहीं बोला, लेकिन जो पिक्चर आपने क्रिएट की इस शख्सियत की वो झूठी तस्वीर थी. आप इस मतलब को समझने की कोशिश करें, बाज़ औक़ात आपकी ज़बान से निकला हुआ हर्फ झूठा नहीं है, वो रियलिटी है, लेकिन क्योंकि आपने कंप्लीट पिक्चर पेश नहीं की लिहाजा वो झूठ है. अगर मैं इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत का फ़कत एक पहलू उठाऊं और उसको आपके सामने बड़ा करता रहूं, मसलन आप इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सीरत पर आते हैं, अगर मैं और आप इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत के फ़कत और फ़कत इबादी पहलू को, उनकी नमाजों को, उनकी दुआओं को, उनकी सहीफ़े सज्जादिया के खास दुआओं को बहुत ज्यादा प्रमोट करें सोसाइटी के अंदर। जो तस्वीर मैं और आप पेश करें उसमें झूठ नहीं है। कल को आप मुझसे सवाल करें कि आपने सीरत इमाम सज्जाद की बात की थी, आपने सीरत इमाम सज्जाद क्यों नहीं बताई कि इमाम ने फला काम भी किया था, तो मैं कहूंगा मैंने 3 दिन फकत फकत सीरत इमाम सज्जाद बताई, मगर सीरत इमाम सज्जाद के अलावा मैंने कुछ और आपको बताया? मसलन इमाम की दुआएं मकारे में अखलाक के अलावा मैंने कुछ आपको बताया? इमाम की रिसाले हुकूक के अलावा मैंने कुछ आपको बताया? इमाम की मुनाजात तायबीन के अलावा मैंने कुछ आपको बताया? आप कहेंगे नहीं। तो मैंने कहा पस का मतलब ये कि मैंने तो कहीं झूठ नहीं बोला, मैंने आपको सीरत इमाम सज्जाद पेश किए। नहीं अजीजाने गिरामी, ये सीरत इमाम सज्जाद वाकई नहीं है। वो तस्वीर जो आप इमाम सज्जाद की बना रहे हैं वो 100% कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक तस्वीर नहीं है, वो वाकई तस्वीर नहीं है। और ये भी एक तरह का झूठ है कि जो तारीख के अंदर किया गया है, जिसके बारे में बाज़ औक़ात इंसान हसासियत नहीं दिखाता, बाज़ औक़ात सेंसिटिव नहीं होता और जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है मुझे और आपको। लिहाजा जब तारीख की आप किताबें पढ़ रहे हो, जब हिस्ट्री का आप मुताला कर रहे हो, तो इस बात को मद्देनजर रखिएगा कि बाज़ मौक़ों पर तारीख के अंदर वो चीज़ें नकल की गई हैं जो हकीकत से उनका ताल्लुक नहीं था। क्यों? उसकी भी वजूहात हमारे पास मौजूद है। इस वक्त हमारे पास तारीख की जो मशहूर किताबें, अभी अगर हम लोग तारीख इस्लाम की अगर बात करें, मसलन आप इब्ने इसहाक की किताब उठाएं, मगाज़ी वाकिदी उठाएं, इब्ने हशाम की किताब उठाएं, दीगर बहुत सारी किताबों को उठाएं, इसमें से अक्सर किताबें वो किताबें हैं कि जो खलीफा बनी अब्बास की रिक्वेस्ट के ऊपर इन मौरखीन ने लिखी है। और आप खुद जानते हैं कि अगर आपको आज के दौर का प्रेसिडेंट कहेगा कि आज के हालात को या पिछले चंद 100 साल की कैनेडा की हिस्ट्री लिखें, तो आप क्या लिखेंगे और क्या नहीं लिखेंगे वो आप सबको मालूम है। जब एक खास शख्स आपको इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, आपके ऊपर पैसा लगा रहा हो, आपको प्रोवाइड कर रहा हो सारी चीज़ों को, तो आप हकायक को 100% जिक्र नहीं करेंगे। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा मोहतात होकर तारीख का मुताला करना होगा और बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ जो है वो जिक्र करना होगा। आखिरी नुक्ता, और वो नुक्ता ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम की ये 250 साल ज़िंदगी एक अहम तरीन स्ट्रेंथ है तशय्यो के पास, कि हमारे पास मासूम ने 250 साल ज़िंदगी गुजारी डिफरेंट सरकमस्टांसिस के अंदर, डिफरेंट इन्वायरमेंट के अंदर, और जिसकी वजह से मुझे और आपको बहुत सारे हकायक को, बहुत सारी प्रैक्टिकल तरीक़ेकार ज़िंदगी कैसे होना चाहिए हमें नज़र आता है। मैं सिर्फ एक मिसाल देकर आपको समझाऊं, ये पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अगर फकत और फकत जिस तरह से इस वक्त बरादरान अहले सुन्नत के पास जो मासूम की लाइफ स्पैन है वो फकत और फकत 23 इयर्स पर डिपेंड करती है, उसमें से भी अगर आप मक्की दौर को निकाल लें जिसमें रसूल को बहुत क्लियर इस्लाम की तबलीग का मौका नहीं मिला, तो फकत और फकत आपके पास 10 ईयर्स बचते हैं कि जिसके अंदर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो इस अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी को पेश किया मुसलमानों के सामने। लिहाजा यही वजह है कि बरादरान अहले सुन्नत बाज़ औक़ात मजबूर हो जाते हैं क़ियास से इस्तिफादा करने से, बाज़ औक़ात मजबूर हो जाते हैं फ़िक़्ह के अंदर इस्तेहसान से इस्तेमाल करने के लिए, और वो मजबूर हैं, उनके पास बाज़ औक़ात ऑप्शन भी नहीं है कि वो इन हक़ायक को दूर, इस हक़ायक को समझ सके, क्योंकि जो दर अहले बैत को छोड़ता है वो दर दर की ठोकरें खाता रहेगा। इस दर पे आकर जो है वो आपको हक मिलने वाला है, जिसने इस दर को थामा वहीं से जो है हक मिलेगा, वरना जो है वो आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। बिल आखिर जो है वो जब अली और औलाद अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में आएंगे तो आपको जो है वो हक मिलेगा। हम अपनी जब अहले तशय्यो की हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 250 ईयर्स की मासूम की जिंदगी मौजूद है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर ये मौका पेश नहीं आया कि उनकी लाइफ के अंदर कोई एक ऐसा हुक्मरान आ जाए मुमलिकत इस्लामिया के ऊपर कि जो अपने आप को खलीफतुल मुस्लिमीन कहता हो और इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक ना हो, जो यजीद की सूरत में नज़र आता है। फासिको फाजिर व शारिब खम्र मुअलिनुल फिस्क आके इस्लामी हुकूमत का लीडर बनता है, जैसे आज हमें आले सऊद की सूरत में नज़र आता है। अपने आप को इस्लाम का नुमाइंदा कहते हैं जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। रसूल की जिंदगी में ये मौका पेश नहीं आया, मुझे और आपकी जिंदगी के अंदर ये मौका पेश आया, तो मुझे और आपको क्या करना चाहिए? हमें नहीं पता चलता, हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि मासूम ने इस हालत में क्या किया। لیکن امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے سے امام نے مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ اگر اس طرح کے حالات پیش آئے، اس طرح کے سرکمسٹانسز پیش آئے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ورنہ میں اور آپ مجبور تھے، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ایک اور بہت ظریف نقطہ یہاں پر یہ ہے عزیزان گرامی، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ 250 ایئرز کا اسپین نہیں ہوتا معصوم کا تو میں اور آپ بہت سی مقامات پر خطا کر لیتے، بہت سے مقامات پر غلطی کرتے. میں نے کل آپ کے سامنے سفیان ثوری کا واقعہ پیش کیا، میں نے کل آپ کے سامنے نہج البلاغہ سے امام علیہ السلام کا وہ نقطہ پیش کیا، وہ کلمہ پیش کیا کلمہ انکسار کے اندر سے، کہ جب امام علیہ السلام نے رسول اللہ کی زندگی کے ایک ایونٹ کو ایکسپلین کیا لوگوں کے سامنے کہ وہ ایونٹ جو ہے وہ اسلام کا بنیادی نظریہ نہیں ہے بلکہ خاص انوائرمنٹ کے اندر، خاص سرکمسٹانسز کے اندر رسول خدا نے کاموں کو انجام دیا. لیکن اگر یہ کام نہیں ہوتا تو بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. آپ ایک چیز کی حقیقت کو اس کے ایٹریبیوٹ سے جدا کریں. فلسفی کے اندر شے کی ماہیت کے بارے میں، شے کی حقیقت کے بارے میں، سبسٹنس کے بارے میں، ایسنس کے بارے میں دو حقیقتیں ہوتی ہیں. ایک شے کی ایک ایگزسٹنس ہوتی ہے، اس کا وجود ہوتا ہے، اس کا ہونا ہوتا ہے، ایگزسٹنس. ایک ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے. مثلا میں آپ کے سامنے ایک چیز اگر پیش کرتا ہوں اس وقت یہاں پر، آپ کہیں گے کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہ ایگزسٹنس ہے اس چیز کی. دوسرا سوال میں آپ سے پوچھوں گا یہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، کتاب ہے. سب جاگ رہے ہیں انشاءاللہ، الحمدللہ. یہ جو ہے وہ کتاب ہے. بس پہلی چیز یہ ہے، اٹ ایگزسٹ. سیکنڈ چیز اس کا ایسنس، اس کا سبسٹنس میں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں یہ ایک کتاب ہے. اس کے کتاب ہونے کے لیے آپ کے خیال میں کیا شرائط ہیں، کیا چیزیں کہ جو آپ کہیں گے یہ کتاب ہے. میں مثال دوں، اگر میں اس کتاب کی کور کو اس سے الگ کرنا شروع کروں، ابھی یہاں پہ میں آپ کے سامنے جو کتاب کو پھاڑوں، یہاں پر کور کو الگ کر دوں، اس کے بعد میں آپ کو شو کروں، آپ کہیں گے کیا ہے، ابھی آپ کیا کہیں گے، کتاب ہے. میں اس کے دوسرے کور کو بھی الگ کرنا شروع کرتا ہوں، آپ کیا کہیں گے، کتاب ہے. میں صفحات کو الگ کرنا شروع کروں، ایک موقع ایسا آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ چند پیجز ہیں. ایک موقع ایسا آئے گا کہ یہ کتاب سے تبدیل ہوگی، کیا ہو جائے گی، پیجز میں تبدیل ہو جائے گی. عزیزان گرامی، بعض چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر، اس چیز کو جو تشکیل دے رہی ہیں وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کتاب کو کتاب بنا رہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ اس کے سبسٹنس ہے، وہ اس کی حقیقت ہے، وہ اس کا ایسنس ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. مثلا اس کے کور کا کوئی خاص کلر کا ہونا یہ ایٹریبیوٹ ہے، یہ ہو یا نہ ہو یہ پھر بھی کتاب ہے. اس کو میں بلیک کلر کر دوں پھر بھی آپ کہیں گے یہ کتاب ہے. بس کچھ چیزیں ہیں جو ایٹریبیوٹس ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو اس کا سبسٹنس ہے، اس کا ایسنس ہے. ایک اور مثال دوں میں آپ کو، سادہ مثال. مثلا اگر ایک شخص جو ہے وہ بچپن سے کینیڈا میں بڑا ہوا، کینیڈا کے صرف جو ہے وہ گوروں کو دیکھا اس نے، صرف جو ہے وہ وائٹ پیپلس کو اس نے دیکھا، دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ صرف وائٹ پیپل ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی اور کلر کا انسان ہوتا ہی نہیں ہے. آپ نے اس کو جو ہے وہ ایئرپورٹ سے افریقہ کی ایک فلائٹ لی اور کہا کہ جناب آپ نائجیریا میں جائے چلے جائیں. اب وہ جیسے ہی فلائٹ سے اترے گا پہلا سوال آپ کو کرے گا کہ مجھے اپنے کس دنیا میں بھیجا ہے، یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ کون ہے، جیسے ہیومنس تو نہیں ہے، یہ انسان تو نہیں ہے، یہ کون ہے. تو آپ اس سے سوال کریں گے کہ بھائی کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ، تو کہے گا کہ بھائی انسان تو وائٹ ہونا چاہیے، انسان تو صرف اور صرف وائٹ ہوتا ہے، یہ تو بلیک کلر کی کوئی اور مخلوق ہے، سب اور کوئی اور کریشن ہے خداوند عالم کی، مجھے بتائیں کہ اس کا نام کیا ہے. تو آپ کہیں گے بھائی کلر جو ہے وہ انسانیت کے لیے شامل، انسان کی ایسنس میں شامل نہیں ہے، انسان کی سبسٹنس میں شامل نہیں ہے. لیکن اس شخص کے ساتھ پرابلم کیا تھا، اس کا قصور نہیں ہے. اس کا قصور کیوں نہیں ہے، کیونکہ اس نے آج تک جتنے لوگوں کو، انسانوں کو دیکھا تھا وہ اسی کلر میں دیکھا تھا، ٹھیک ہے. یہ آج تک اس کینیڈا سے باہر نکلا نہیں تھا کہ اس کو معلوم ہو کہ کسی اور کلر کا بھی کوئی انسان اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے. لہٰذا اس سے غلطی کیا ہو رہی تھی، وہ ایک ایٹریبیوٹ کو جو انسانی اسکن کا کلر تھا وہ انسان کا ایسنس سمجھتا تھا. وہ کہتا تھا کہ اگر جب تک کلر وائٹ نہ ہو انسان انسان نہیں ہو سکتا. جب اس نے دیگر انوائرمنٹ کو، دیگر سرکمسٹانسز کو دیکھا تو اس نے دیکھا نہیں، انسان وائٹ بھی ہو سکتا ہے، انسان بلیک بھی ہو سکتا ہے. پس کلر جو انسان کے ایسنس کا حصہ نہیں ہے بلکہ انسان کا ایک ایٹریبیوٹ ہے. اس کا ہونا یا نہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا. خداوند عالم کی نگاہ میں کالا اور گورا برابر ہے، خداوند عالم کی نگاہ میں عرب ہو عجم برابر ہے. فقط اور فقط جو معیار ہے وہ کیا ہے، تقویٰ کا معیار ہے. لہٰذا یہ معیارات جو میں نے اور آپ نے بنائے ہوئے کہ میں فلاں کمیونٹی سے ہوں، وہ فلاں کمیونٹی سے، وہ فلاں زبان بولتا ہے، میں فلاں زبان بولتا ہوں، یہ سارے کے سارے معیار جو ہے خدا کی نگاہ میں کوئی ارزش نہیں دے. فقط اور فقط انسانیت کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے. خدا بندہ ہم سب کو جو ہے تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. खैर जो मिसाल मैं आपको सामने देना चाह रहा था वही देना चाह रहा था कि ये जो रंग की मैंने आपके सामने मिसाल दी, ये शख्स क्योंकि इंसान को सफेद देखा था लिहाजा एक एटीट्यूड को ऐसे समझता रह गया। बाज़ औक़ात सीरत के साथ यही मुश्किल पेश आती है, अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी का 250 ईयर्स का स्पैन नहीं होता तो मैं और आप उस शख्स की तरह होते कि जिसने कैनेडा के अंदर फकत और फकत वाइट पीपल को देखा है। वो ये समझते रहते हैं कि शायद सादा जिंदगी गुजारना, शायद फ़क्र में जिंदगी गुजारना इस्लाम की असास है। मुसलमानों को फकीर होना चाहिए क्योंकि रसूल खुदा ने अपनी 23 साल जिंदगी के अंदर 23 ईयर्स के अंदर फ़क्र में जिंदगी गुजारी है, कभी भी जो है वो रिफा के अंदर जिंदगी नहीं गुजारी है। इसी तरह की बहुत सारी और गलतियां, बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स जो इस्लाम के उसूल नहीं थे, जो प्रिंसिपल्स नहीं थे, मैं और आप अपनी दानिश के अंदर उसको प्रिंसिपल्स बनाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुदावंद आलम का शुक्र है कि खुदावंद आलम ने हमें एक नेमत उज़्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सूरत में अता की कि जिन्होंने मुख्तलिफ हालात के अंदर मुझे और आपको जिंदगी गुजार के बता दिया कि ए अहले बैत के चाहने वालों, ए खुदावंद आलम के बंदो, अगर तुम खुदावंद आलम की इताअत करना चाहते हो हकीकी मानों में तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की ये 250 ईयर्स की जिंदगी तुम्हारे सामने मौजूद है, आओ इसको हकीकी मानों में समझो, अपने हालात से इसका मुताबिक उसकी मुताबिकत करो और फिर जो है उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, वरना महदूदियत अगर तुमने इख्तियार की, अगर इन डेप्थ स्टडी नहीं की, अगर सही मानों में एट्रीब्यूट्स को एसेंस से जुदा नहीं किया तो तुम गलतियों का शिकार हो जाओगे। बाज़ औक़ात मैं और आप अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्यूनिटी में देखते हैं कि बाज़ वो चीज़ें कि जिसका असल से कोई ताल्लुक नहीं है आज वो दीन का मयार बन चुकी है। वो चीज़ अगर दीन के अंदर ना हो तो हम कहेंगे ये शख्स बेदीन है। और कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्लाम के असास से कोई ताल्लुक नहीं है, वो दीन का इतना बड़ा अलम बन चुका है कि अगर उसको दीन से हटा दिया जाए तो आप और मैं कहेंगे कि दीन का फातिहा हो गया है और अलल इस्लाम सलाम हो गया, क्योंकि अगर दीन के अंदर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। और दीनी कामों की जितनी भी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं, चाहे वो आज़ादारी हो और बहुत सारी और चीज़ें, आप देखते हैं कि वो चीज़ें जिनका असास से आज़ादारी से कोई ताल्लुक नहीं है वो महवर बन चुकी हैं, वो चीज़ें कि जो असास से आज़ादारी है उनको हमने साइडलाइन कर दिया है। लिहाजा ये जो मुश्किल पेश आती है उसकी असास, उसका जो रीशा है, उसका जो रूट कॉज है वो ये है कि हम सही मानों में अहले बैत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को नहीं समझते। और वो दर हकीकत वो अपॉर्चुनिटी जो तशय्यो के पास थी, ये अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास, ये स्ट्रेंथ थी हमारी, उसको हमने वीकनेस में तब्दील कर दिया। अजीब व गरीब है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की 250 साल जिंदगी मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ तरीकों से जिंदगी गुजारना दर हकीकत ये स्ट्रेंथ थी तशय्यो की, हमने उसको जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील कर दिया। हमें जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आने लग गया है अब कि ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्या क्यों एक इमाम जो है वो खामोश है और एक इमाम जो है वो अलल ऐलान बगावत कर रहा है हुकाम के खिलाफ। ये दर हकीकत उस अपॉर्चुनिटी को मैं और आप जाया कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेंथ थी तशय्यो की उसको मैं और आपने वीकनेस में तब्दील कर दिया है। खुदारा हकीकी मानों में सीरत अहले बैत को समझने की कोशिश करें और उससे दर्स हासिल करने की कोशिश करें, यही है जो हमारे निजात का बायस बनेगी। एक बार दुरूद भेजो। मैं माजरत खाऊं कि ये जो तीन पॉइंट्स थे तुलानी हुए और इमाम सज्जाद की सीरत में हम लोग जो है वारे नहीं सके, लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर जब भी हम सीरत इमाम सज्जाद या किसी भी इमाम की सीरत को पढ़ना शुरू करते हैं, अगर इन मुकदमात के साथ, इन इस प्री रिक्वेजिट के साथ हम एंटर होंगे तो हम जो है वो बेहतर तरीके से सीरत को समझ पाएंगे और उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, वगरना शायद सीरत पढ़ते रहेंगे लेकिन हम उसको हकीकी मानों में अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरा नुकता जो मैं कल की मजलिस में तकरार कर चुका हूँ और आज दोबारा तकरार कर लूँ, वो ये कर रहा हूँ कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की 35 इयर्स की ये लाइफ स्पेन कि जो कल जो मैंने जिक्र किया था, दरहकीकत तशय्यो का सेंसिटिव तरीन दौर है तारीख का, कि जिसके अंदर इमाम अलैहिस्सलाम ने तशय्यो को डार्क एज से गोल्डन पीरियड के अंदर लिखे गए, जब तशय्यो अपनी सख्त तरीन दौर गुजारी थी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कोई इमाम का नाम लेवा नहीं था, अहले बैत अलैहिस्सलाम को चाहने वाला नहीं था। वहां से इमाम ने उस मकाम पर पहुंचा दिया तशय्यो को कि जब हजारों लोग इमाम बाकर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दस्तरखान से फैजियाब हो रहे हैं। जब इसकी बात कर रहे हैं तो यकीनन इन 3-5 दिनों के अंदर इस सीरत को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बयान करना मुमकिन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुझ जैसे अदना तालिबे इल्म के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इस सीरत को, इस जामे सीरत को आपके सामने पेश करे। ये जो कुछ काम किया जाएगा इन चंद दिनों के अंदर फकत स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए आपको, ये दरके इग्निशन है कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं। फकत इतना जान लें कि अब तक हम जहल मुरक्कब का शिकार थे, हम ऐसी इग्नोरेंस का शिकार थे कि जब हम खुद, हमें खुद को नहीं मालूम था कि हमें नहीं मालूम है। बस फकत ये चंद मजालिस ये काम करेंगे मेरे और आपके लिए कि मैं और आप ये समझ सकें कि हमें अब तक इमाम सज्जाद के बारे में कुछ नहीं मालूम है, और हम इस बात को एक स्टार्टिंग पॉइंट ले सीरत को समझने के लिए, सीरत के बारे में तहकीक करने के लिए, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की और दीगर अइमा अलैहिस्सलाम की सीरतों को हकीकी मानों में समझने के लिए एक कदम बढ़ाएं। ये ना समझिएगा कि ये 3 दिन या 5 दिन की मजालिस अटेंड करके मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर ली है, नहीं, यहां से आपकी जिम्मेदारी शुरू हो रही है। अज़ीज़ाने किरामी, अल्लाह ताला ने इमाम हुसैन, करबला आशूर के दिन खत्म नहीं होती, आशूर के दिन से शुरू होती है। शायर एक फारसी में बहुत खूब जुमला कहता है, करबला दर करबला मीमान गर ज़ैनब नबूत। करबला का नाम और निशान जो है वो हस्ती से मिट जाता अगर इमाम सज्जाद तो जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि की सीरत हमारे सामने नहीं होती। बस आगाज़ करबला है आशूर, और ये जो काम मैं और आप कर रहे हैं ये दर हकीकत उन अजीम हस्तियों की कि जिनका एहसान है हम सब के ऊपर कि जिन्होंने इस्लाम का नाम आज तक जिंदा रखा। कुछ मशहूर जुमला आपको मालूम है, जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की बारगाह में शख्स आके कहता है कि मौला करबला में आपकी बाबा की फतह हुई या ये बनी उमैया की फतह हुई, का अजान की आवाज आने दो और देखना कि कौन फाते हुआ था। या बाज रिवायतों के मुताबिक किसी को कहा कि जाओ 2 रकत नमाज पढ़ के आओ और मुझसे आके बात करना। जब रावी आके सवाल करता है कि मौला मेरे सवाल का जवाब, कहा जवाब मिल गया तुम्हें, इसी नमाज की खातिर, इसी दीन को कायम करने की खातिर ये सारी कुर्बानी दी गई। दीन का कायम रहना, दीन का नाम लिया जाना इस बात की गवाही है कि हुसैन जिंदा है, हुसैनिया जिंदा है, हुसैन को फतह हासिल हुई है, और बातिल जो है वो सरनगुं हुआ है, और बातिल जो है वो फना हुआ है। जाहिरी तौर पर फतह हासिल करने के बावजूद आज 1400 साल गुजरने के बाद मैं और आप देख रहे हैं कि इस अरबेन पे इंशाल्लाह आप हमें मुजाहरा करेंगे कि कितने मिलियन अफराद जो है वो हुसैन का नाम लेवा है, हुसैन की जियारत के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ है यजीद और औलाद यजीद, कहाँ है वो उस जमाने के फिरौन कि जो हुसैन के जिस्म को कत्ल करके ये समझ रहे थे कि नाम हुसैन को हमने मिटा दिया। नहीं अजीजा ने गिरामी, नाम हुसैन जिंदा हुआ है। उस बीज की तरह जब जमीन में बोया जाता है तो एक तनावर दरख्त बनता है, का शजरतिन तय्यबा, हक की मिसाल ऐसी मिसाल है कि हक जिस कदर दबाया जाएगा जमीन के अंदर उतना ही जो है वो दरख्त की तरह तनावर होके बाहर निकलेगा, क्योंकि ये शजर तय्यबा है। और नाम हुसैन, जिक्र हुसैन, याद हुसैन, मकतब हुसैन उस शजर तय्यबा की मानंद है कि ये दुनिया जितना मिटाना चाहेगी उतना वसी होता जाएगा, उतना फैलता जाएगा, उतना तनावर होता जाएगा, उतना ज्यादा अपने फ्रूट्स, अपने समर जो है वो दुनिया को देता जाएगा। एक बार दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज रोज़े जुमा है और आका और मौला इमाम ज़माना अज़्ज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मंसूब दिन। शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़ा की तहज़ियत जिस हस्ती को मुझे और आपको देनी चाहिए और जो हकीकी मानों में इस गम का सजावार है, जो हकीकी मानों में हुसैन का गम मना रहा है, उस हस्ती का नाम जो वो हस्ती मेरा आका और मौला इमाम ज़मान अज़्ज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ। ज़ियारते नाहिया में मेरा जुमला कहते हैं, आप दुआए नुतबा में इस बात की तिलावत करते हैं, ऐन तालिबो बिदमिल मकतूल बिकरबला, कहाँ है वो हस्ती कि जो आके अपने जद, अपने आका, अपने बाबा का के खून का इंतकाम लेगी। और ज़ियारत नाहिया में मेरा मौला इस तरह से फरियाद करता है, शायद ये ज़ियारत इमाम ज़माना अज़्ज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से हो, तो मेरा मौला कहता है, فلابقين عليك صباحا ومساء ولن دبن عليك بدل الدموع دما اپنے جد امام حسین کو خطاب کر کے میرا مولا کہتا ہے کہ آقا و مولا میرے جد امام حسین میں صبح و شام آپ کی غم میں گریہ کرتا ہوں. مولا کیسا گریہ کرتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں بدلت دموع دما, میں آنسو نہیں بہاتا, میں خون کے آنسو روتا ہوں اپنے جد کے گریے میں, غم کے اندر. عزیزان کرامی, حسین کے غم میں اس کا فرزند گریہ گناہ ہے. وہ انتظار کر رہا ہے میرا اور آپ کا, کہ میں اور آپ کا منتظر ہے کہ ہم تیار ہوں اور خون حسین کا حقیقی معنوں میں انتقام لیا جائے. آئیے سب مل کے بارگاہ حسینی میں امام زمانہ کی نیابت ایک سلام کرتے ہیں. لیکن یہ سلام آج جسم حسینی کو میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. ان سفر کے ایام کے اندر, محرم کے ایام کے اندر نہیں معلوم کہ حسین کا سر کس دربار کے اندر موجود ہے. آئیے سر حسین کو سلام کرتے ہیں. زیارت نائیہ میں میرا مولا کہتے ہیں السلام علی الخدیب شیب الخدیب, اس داڑھی پر میرا سلام ہو کہ جو خون میں آغشتہ ہو گئی. السلام علی شیب الخدیب, میرا سلام ہو اس داڑھی پر کہ جو خون میں آلودہ ہو گئی. السلام علی خد تریب, ارے میرا سلام ہو ان گالوں پر جو مٹی میں آلودہ ہو گئے. مولا امام زمان سلام کرتے ہیں. آئیے مولا کی نیابت میں آقا امام حسین کو ایک سلام کرتے ہیں, لیکن امام حسین کے اس سر کو سلام کرتے ہیں. آئیے سب مل کے اپنے آقا اور مولا کو خلوص دل کے ساتھ مولا امام زمانہ کی نیابت میں السلام علی الحسین, نہیں ایسے نہیں, سب ساتھ مل کے السلام علی الحسین وعلی علی. مقتل کا جملہ یہ ہے کہ حسین کا سر ابن زیاد کے دربار میں, اس شرابی کے دربار میں تشت میں رکھ کے اس کے سامنے لایا گیا. یہ نا نجیب ایک چھڑی کو اٹھاتا ہے, حسین کے ہونٹوں پر رکھنا شروع کرتا ہے. رسول خدا کا ایک صحابی زید ابن ارقم, اس سے برداشت نہیں ہوا, کہا ابن زیاد تجھے خدا کا واسطہ اپنی اس چھڑی کو اس پاک ہونٹوں سے ہٹا لے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے خدا کا رسول حسین کے ان ہونٹوں کا بوسا لیتا تھا, یہاں تک کہ زید ابن ارقم سے برداشت نہیں ہوا, ابن زیاد کے دربار سے لوگوں کو برا بلا کہتا ہوا نکلنا شروع ہوتا ہے. میں کہوں گا زید ابن ارقم بہت آسان تھا تم پہ کے دربار سے نکل گئے, ارے اسی دربار میں سید سجاد موجود ہے, ارے اسی دربار میں زینب کبرا موجود ہے, جنہوں نے پوری زندگی حسین کو رسول کے ساتھ دیکھا ہے, ارے رسول کو بوسا لیتے ہوئے دیکھا ہے. مجھے نہیں معلوم اس بہن نے کیسے برداشت کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ لا معبود سواک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.